नमस्कार, आप सुन रहे हैं जनसत्ता पर कारोबार जगत की बड़ी खबरें। दूर संचार कंपनी भारती एयरटेल ने अपने एयरटेल स्टार्टअप एक्सेलरेटर कार्यक्रम के तहत क्लाउड आधारित नेटवर्क समाधान प्रदान करने वाली सिनर्जी टेक्नोलॉजीज की 7% हिस्सेदारी खरीदी है। एयरटेल ने एक बयान में कहा कि यह अधिग्रहण कंपनी को उन लघु और मझोले व्यवसायों के लिए अपने नेटवर्क एज ए सर्विस के प्रस्ताव को मजबूत करने में सक्षम करेगा जो क्लाउड आधारित सेवाओं को अपनाने पर विचार कर रहे हैं। नवी मुंबई की सिनर्जी सभी तरह के व्यवसायों के लिए क्लाउड पर एकीकृत नेटवर्किंग समाधान संबंधी सुविधा प्रदान करती है। एयरटेल ने अपनी सहमति के आधार पर निकाले गए मूल्यांकन के जरिए ये हिस्सेदारी खरीदी है और गोपनीयता का हवाला देते हुए मूल्यांकन राशि का खुलासा नहीं किया है। सार्वजनिक क्षेत्र की बिजली उत्पादक कंपनी NTPC ने स्विस कंपनी एनर्जी वर्ल्ड के साथ गठजोड़ किया है। ये करार संयुक्त व्यवहार्यता अध्ययन के परिणाम के आधार पर गुरुत्वाकर्षण आधारित ऊर्जा भंडारण प्रौद्योगिकी और सॉफ्टवेयर समाधानों की तैनाती के लिए किया गया है। एक बयान में कहा गया कि NTPC ने इस संबंध में एनर्जी वॉल्ट होल्डिंग्स इंक के साथ एक सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं। समझौते का उद्देश्य एक संयुक्त व्यवहार्यता अध्ययन के परिणाम के आधार पर एनर्जी वॉल्ट की EVX गुरुत्वाकर्षण आधारित ऊर्जा भंडारण प्रौद्योगिकी और सॉफ्टवेयर समाधानों की तैनाती के लिए दीर्घकालिक रणनीतिक साझेदारी कायम करना है। इसके साथ ही ये तकनीक एनर्जी वॉल्ट के गुरुत्वाकर्षण आधारित ऊर्जा भंडारण प्रणाली के लिए मिश्रित ब्लॉकों के निर्माण के लिए कोयले की राख के लाभकारी उपयोगों की पेशकश करती है। NTPC के चेयरमैन और प्रबंध निदेशक गुरदीप सिंह ने कहा, एनर्जी वॉल्ट के साथ सहयोग से NTPC को समग्र ब्लॉकों के निर्माण के लिए कोयले की राख का उपयोग करके अपने ऊर्जा संक्रमण लक्ष्यों को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी। ये सहयोग अर्थव्यवस्था को भी बढ़ावा देगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारतीय डाक भुगतान बैंक के लिए 820 करोड़ रुपए के वित्तीय समर्थन को मंजूरी दे दी है। एक सूत्र ने बुधवार को ये जानकारी दी। वित्तीय समर्थन से सार्वजनिक क्षेत्र के भुगतान बैंक को देश के दूरदराज के क्षेत्रों में पैठ बढ़ाने और वित्तीय समावेश को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी। सूत्र ने PTI भाषा से कहा, भारतीय डाक भुगतान बैंक को 820 करोड़ रुपए का वित्तीय समर्थन देने का प्रस्ताव था, इसे मंत्रिमंडल ने मंजूरी दे दी है। IPPB में फिलहाल 5 करोड़ खाते हैं और इसकी 1.36 लाख शाखाएं हैं। बैंक की करीब 48% खाताधारक महिलाएं हैं। सूत्र ने कहा, सरकार के सामाजिक लक्ष्यों को पूरा करने के लिए IPPB की महत्वपूर्ण भूमिका है। इस वित्तीय समर्थन से बैंक को खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में सरकार के वित्तीय समावेश कार्यक्रम को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी। देश की सबसे बड़ी जीवन बीमा कंपनी LIC ने बुधवार को अपने 21 करोड़ रुपए के IPO के लिए कीमत का दायरा 902 से 949 रुपए प्रति शेयर तय किया है। IPO के तहत एंकर निवेशक 2 मई को बोली लगाएंगे। निर्गम 4 मई को संस्थागत और खुदरा खरीदारों के लिए खुलेगा और 9 मई को बंद होगा। शेयर IPO बंद होने के एक सप्ताह बाद 17 मई को शेयर बाजारों में सूचीबद्ध हो सकते हैं। सेबी के पास दाखिल अंतिम कागजात के अनुसार बोली लगने वालों के डीमैट खातों में शेयरों का आवंटन 16 मई तक होगा, जिसके बाद LIC शेयर बाजारों में इक्विटी शेयरों का कारोबार शुरू करेगी और शेयर 17 मई को या उसके आसपास सूचीबद्ध किए जाएंगे। इस अवसर पर निवेश और सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग के सचिव तुहिन कांत पांडे ने कहा कि LIC को सूचीबद्ध करना सरकार की दीर्घकालिक रणनीति का हिस्सा है और इससे लंबी अवधि में निगम के मूल्य में अत्यधिक वृद्धि होगी। पांडे ने बुधवार को यहां कहा, पूंजी बाजार के माहौल को देखते हुए LIC IPO का आकार सही है और इससे बाजार में पूंजी तथा मौद्रिक आपूर्ति में कमी नहीं होगी। दो पहिया वाहन कंपनी TVS मोटर ने आपसी हित और वाणिज्यिक परिवहन के क्षेत्र में सहयोग के लिए बाइक टैक्सी मंच रैपिडो के साथ एक रणनीतिक साझेदारी की है। कंपनी ने बुधवार को ये जानकारी दी। कंपनी ने एक बयान में कहा कि दोनों कंपनियां परिवहन व्यवस्था और निर्बाध प्रौद्योगिकी मंच में अपने मजबूत पक्ष को एक साथ लाएंगी। समझौते के तहत कंपनियां दो पहिया और तिपहिया वाहनों दोनों को शामिल करेंगी। इसके साथ ही पेट्रोल और डीजल से चलने वाले वाहन और इलेक्ट्रिक वाहन खंडों में विस्तार करेगी। टीवीएस मोटर कंपनी के संयुक्त प्रबंध निदेशक सुदर्शन वेणु ने कहा, रैपिडो ने कैप्टन्स और राइडर्स का एक मजबूत उपयोगकर्ता आधार बनाया है और आज वह भारत में अग्रणी बाइक टैक्सी मंच है। हमें विश्वास है कि इस करार से हम टीवीएस इलेक्ट्रिक पोर्टफोलियो से उच्च गुणवत्ता वाले कनेक्टेड उत्पादों और हमारे समूह से वित्त पोषण का उपयोग करके गतिशीलता और उच्च सार्वजनिक खंड में अपनी पहुंच का विस्तार कर सकेंगे। केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते ने कहा है कि बीते वित्त वर्ष में देश से तैयार इस्पात का निर्यात बढ़कर 1.35 करोड़ टन पहुंच गया है। मूल्य के हिसाब से ये 1,00,000 करोड़ रुपए का रहा। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार इससे पूर्व वित्त वर्ष 2020-21 में इस्पात निर्यात 1.07 करोड़ टन था। मेटलॉजिक पीएमएस की तरफ से स्टील और इंजीनियरिंग निर्यात पर आयोजित कार्यक्रम में इस्पात मंत्री कुलस्ते ने कहा, देश ने 2021-22 के दौरान 1,00,000 करोड़ रुपए मूल्य का 1.35 करोड़ टन इस्पात का निर्यात किया, जबकि 46,000 करोड़ रुपए के इस्पात का आयात किया गया। उन्होंने कहा कि भारत से वस्तुओं का निर्यात का मूल्य 420 अरब डॉलर रहा। कुलस्ते ने कहा कि वित्त वर्ष 2021-22 में देश में इस्पात की खपत अब तक के उच्च स्तर करीब 10.6 करोड़ टन पर पहुंच गया, जबकि देश ने रिकॉर्ड 12 करोड़ टन इस्पात का उत्पादन किया। क्षेत्र की सालाना वृद्धि दर औसतन 5-6% है। विस्तार से खबरें पढ़ने के लिए आइए जनसत्ता.com पर। नमस्कार।